نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. كبھی کبھار گناہ اتنے انسان ان میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ ان کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو یہ احساس نہیں رہتا کہ وہ غلط کر رہا ہے. وہ یہی سوچتا رہتا ہے ہم نے کیا غلط کیا، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہمارا کیا قصور ہے، کافی کر تو رہے ہیں ہم. یعنی انسان کو جو احساس ضیاع ہے نا، اس کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہم ایک تو ایسے ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں ان کو ایک نارم سمجھا جاتا ہے، ایک معمول کی چیزیں بن چکی ہیں، اور بلکہ ان کے اوپر کوئی ان کو غلط سمجھے تو اس پہ بھی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بھی کوئی غلط بات ہے. یعنی جب گناہ کی کراہت نہ لگ رہے، گناہ گناہ نہ لگے، تو پھر سوچیں انسان کی بخشش مانگنا، اس کے لیے استغفار کرنا، وہ تو پھر بعد کی بات رہ جاتی ہے نا. تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہے جو ہم غلط کر رہے ہیں. دوسروں کے نہ دیکھیں، اپنے دیکھیں، ماضی میں مجھ سے کیا غلطیاں ہوئیں، ان کو بھی ذرا کچھ دیر بیٹھیں اور سوچیں کہ میرے سے زندگی میں کیا کچھ غلط ہوا ہے، کہیں حقوق میں، حقوق اللہ میں یا حقوق العباد میں. وہ ہم کہتے ہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، کیا ہم سے قصور ہوئے، کیا ہوئے، ہمیں کہاں اب یاد ہے. تو دیکھیں ہمیں یہ تو بہت یاد رہتا ہے کہ لوگوں سے کیا قصور ہوئے، اس نے میرے ساتھ یہ یہ کیا تھا. اس کا 10 سال پہلے کا بھی قصور کسی کا یاد ہوتا ہے، میری شادی ہوئی تھی تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، پھر فلاں نے یہ کیا، پھر فلاں نے مجھے یہ کہا، تو ان کے قصور یاد رہیں نہ رہیں اس سے ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن ہمیں اپنے قصور ضرور یاد رہنے چاہیے، اور وہ سوچنے سے غور کرنے سے ہی یاد آئیں گے، کیونکہ زندگی اتنی تیز چل رہی ہے کہ کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ دیا اور اتنی توفیق بھی دی ہے کہ ہم سوچ سکیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یقین کریں، اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے اور وہ ان کے لیے بخشش مانگے، اپنے قصور کو مان جائے. ایک یہ بھی بخشش مانگنا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں آپ استغفار کی اتنی اتنی تسبیحاں کر لیں، آپ بھی خوشی خوشی کر لیں، چلو کر لیتے ہیں، ویسے ہم اتنے کوئی گناہ گار تو نہیں ہیں، تب ٹھیک ہے ہم نماز روزہ کرتے ہیں، تو کیا ہم نے کچھ ایسا کیا تو نہیں ہے، لیکن چلو اب ہمیں کہا گیا تو کر لیتے ہیں. ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن خود بتائیے، اگر کسی کا کوئی قصور ہو اور وہ کہے کہ ویسے تو میں نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ کہتی ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں آئی ایم سوری، تو کیا اس کی معافی قبول کی جائے گی؟ نہیں نا. اس لیے کہ معافی تو کسی غلطی پہ ہوتی ہے، کسی کمی کوتاہی پہ ہوتی ہے. معافی تو اصل میں ہے ہی ریئلائزیشن، کہ میں نے ریئلائز کیا. معافی کو دوسرے ورڈز میں اگر آپ کہیں تو ایک ریئلائزیشن ہے کہ میں نے غلط کیا، اس کا اعتراف ہے. جب اعتراف ہی نہیں تو مجھے بتائیں استغفار کی تسبیحوں کا کیا تک بنتا ہے. یعنی آپ ایک تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ویسے ہی بہت نیک ہیں اور تسبیحات بھی کیے جا رہے ہیں، تو وہ کچھ میک سینس نہیں کرتا نا. تو آج کچھ دیر کے لیے ان باتوں پہ غور کریں، کہاں کہاں زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں، اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. تو معافی کا مانگنے کا مرحلہ جو ہے نا، وہ سیکنڈ ہے، بعد کا ہے. پہلے کیا ہے؟ اس چیز کو جاننا کہ میں کس چیز کی معافی مانگ رہی ہوں. आइए आज आपकी मुलाकात एक ताबेई से करवाती हूँ। वो लोग कैसे थे कि जिनको अपनी ज़िंदगी में गलतियों का, कोताहियों का कैसा शदीद एहसास रहता था। ये ताबेई जो हैं, ताबेई मालूम है ना आपको, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी सहाबी को देखा हो, तो ये ऐसे ताबेई हैं जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, इनके नाम से सब वाकिफ़ होंगे, आलिम थे कुरान के, और फरमाया करते थे कि कोई आयत कुरान की ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में मैं ये ना जानता हूँ कि वो कहाँ उतरी, कब उतरी, कैसे उतरी। ये कोई आयत के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि मैं उसके बारे में नहीं जानता। यानी इतने ज़्यादा बड़े आलिम थे। तो ये उनके स्टूडेंट हैं, रबी बिन खतीम उनके स्टूडेंट हुआ करते थे। इनकी कुन्नियत थी अबू यजीद। इनसे मिलने के लिए दो लोग गए, हज़रत हिलाल और मुनज़र रहमतुल्लाह अलैह। तो ये चाह रहे थे कि उनकी ज़ियारत की जाए, ताकि जैसे आप किसी नेक बंदे के पास जाते हैं, सोचते हैं थोड़ी देर के लिए इनके साथ बैठेंगे तो कुछ बातें करेंगे, ईमान और अपना यकीन पुख्ता करेंगे। तो मुनज़र ने अपने मेहमान से कहा कि क्यों ना उनकी तरफ चलें, सॉरी हिलाल ने, तो मुनज़र ने कहा क्यों नहीं, ज़रूर चलें, मैं तो कूफा आया ही इसलिए हूँ ताकि उनसे मुलाकात कर सकूँ। तो उस ज़माने में देखिए, उलमा से मिलने का भी लोगों को ऐसा शौक़ हुआ करता था कि मैं किसी जगह गया हूँ तो वहाँ पर कोई नेक शख्स हैं, उनकी ज़ियारत करूँ, उनके पास बैठूँ और कुछ अच्छी बातें सीखूँ। लेकिन इनको फालिज हुआ हुआ था। तो अब फालिज में ज़ाहिर है घर के होके रह गए थे, रबी को फालिज हुआ हुआ था। तो हिलाल कहने लगे कि अपने मेहमान को जब ले जाने लगे कि इनको वैसे तो फालिज हुआ हुआ, तो अपने घर के होके रह गए, वहीं पे अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहते हैं। तो लोगों से इतना मेल मुलाकात करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। तो मुनज़र ने कहा कि फिर इनके पास हम जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो बड़े बड़े उलमा शुयूख हैं, इनके मिजाज ज़रा नरम और नाजुक हुआ करते हैं। आपकी क्या राय है कि जब हम इनसे मुलाकात करें तो हम इनसे सवालात करें या खामोश बैठे रहें, और जो वो अपनी मर्ज़ी से बोलें वही सुन लें? जैसे आप कहीं जाने लगते हैं तो क्या आदाब हैं उनके पास जाने के? तो हिलाल बोले कि अगर आप रबी के पास एक साल तक भी बैठे रहेंगे ना तो वो बोलेंगे नहीं, जब तक कि आप इनसे ख़ुद ना कोई बात कर लो। वो कतन बात करने में पहल नहीं करते, क्योंकि उनका काम क्या है, ज़िक्र इलाही। तो खामोशी से गौर व फिक्र करते रहते हैं, ज़िक्र करते रहते हैं। थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि उनकी लाइफ कैसी थी ना। तो फिर ये दोनों चल दिए उनके पास, उनके घर पहुँचे, सलाम किया उनको और उनका हाल पूछा। रबी फरमाते हैं, हाल क्या पूछते हो ऐसे नातवां का, कमज़ोर का और गुनाहगार का, जो अपने अल्लाह का रिज़्क़ खाता है और अपनी मौत का मुंतज़िर है। तो हिलाल कहने लगे, कूफा में एक बड़ा माहिर तबीब है, आपकी इजाज़त हो तो इलाज के लिए बुला लें। आप देखें, तवक्कल अल्लाह इनका इतना ज़्यादा था कि फरमाते हैं, मैं जानता हूँ कि दवा बरहक है, इलाज करना आना सुन्नत है, लेकिन मैंने आद को, समूद को, असहाबे रस को और इनके दरमियान आने वाली कौमों के हालात पढ़े हैं। मैंने दुनिया में उन अकवाम के लालच और दुनियावी साजो सामान में जो उनकी दिलचस्पी थी उसको भी देखा। वो हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, साहिब हैसियत थे, उनमें भी बड़े बड़े तबीब हुआ करते थे, वो लोग बीमार भी होते थे। अब देखिए, ना कोई तबीब रहा, ना कोई मरीज़ रहा, सभी फना हो गए, इनका नामो निशान भी नहीं रहा। फिर गहरी लंबी सोच के बाद फरमाया, हाँ एक बीमारी ऐसी ज़रूर है जिसका इलाज ज़रूर कराना चाहिए। मंजर ने बड़े अदब के साथ पूछा, वो कौन सी बीमारी है? फरमाया, उसका नाम है गुनाह। पूछा इसका इलाज फिर किस दवा से किया जाए। फरमाने लगा इस्तगफार से। मुंजर ने पूछा शिफा कैसे होगी। फरमाया सच्ची तौबा की जाए, फिर वो गुनाह दोबारा ना किया जाए। फिर कहते हैं हमारी तरफ गौर से देखा, फिर फरमाने लगे जो छुप के किए गए गुनाह है ना, वो लोगों की नज़रों से तो छुपे रहते हैं लेकिन अल्लाह के सामने तो वो जाहिर हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने तो कोई चीज़ छुपी हुई है ही नहीं, वो तो अल्लामुल गुयूब है, सीनों के भेद जानता है। तो इसकी दवा तलाश करो छुप के गुनाह करने की। मंजर ने पूछा आप खुद ही बता दें इसकी दवा क्या है। फरमाया सच्ची और खालिस तौबा। फिर जारो कतार रोने लगे, यहाँ तक इनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग गई। मंजर ने यह अजीब मंजर देखा कि आप रो रहे हैं, हालांकि फरमाने लगे आपकी तो इबादत, तकवा, इखलास का हर तरफ चर्चा है। आप खुद सोचे ना, जिनकी जिनको मिलने के लिए ये आए हैं, मतलब इनकी कितनी धूम थी कि ये कैसे बड़े फकीह हैं, इतने मुत्तकी हैं, उनका तो दूर दूर तक इनकी इस बारे में शोहरत थी। तो आप रो रहे हैं। फरमाया सद अफसोस है, भला मैं क्यों ना रो, मैंने खुद इन आंखों से ऐसे लोगों को देखा है जिनके मुकाबले में हम तो बोने नजर आए, और वो कौन है? सहाबा कराम, उनके सामने हम क्या हैं? तो कहते हैं अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि इनका बेटा आया और उसने बड़े अदब से सलाम किया बाप को, और इनको ना मीठा बहुत पसंद था, तो कहने लगा आके अब्बा जान अम्मी ने आपके लिए बहुत ही एक अच्छा मीठा बनाया और उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि आप इसमें से ज़रूर खाएं, इजाज़त हो तो मैं ले आऊँ। फरमाया ले आओ। जब बेटा वो उम्दा पकवान लाने के लिए कमरे से बाहर निकला तो उसी वक़्त एक सवाली ने दरवाज़ा खटखटाया। आपने कहा इसे अंदर बुला लो। तो कहते हैं मैंने देखा बिखरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी है, फटे पुराने कपड़े पहने में झूमता हुआ अंदर आ रहा है, उसके मुंह से भी रालें टपक रही हैं। अच्छा अब हम ऐसे बंदे को देखे क्या कहेंगे, दूर दूर इसको कुछ दे दिलाओ और बाहर फारिग करो भाई। कहते हैं वो सेन में आके खड़ा हो गया। कहते हैं मैं अभी हैरत में ही डूबा हुआ था, उसको देख रहा था कि इतने में शेख का बेटा जो था वो बड़े से थाल में पकवान लेके आ गया, जो जो भी डिज़र्ट था वो लेके आ गए। तो रबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से कहा ये थाल इस सवाली को दे दो, इसके सामने रख दो। उसने हुक्म की तामील करते हुए थाल उसके सामने रख दिया। वो आदमी तो इस पर टूट पड़ा। हालत ये थी कि उसकी रालें टपक रही थी, खाने पे गिर रही थी, और वो बदस्तूर खाने में जुता हुआ था, यहाँ तक कि सारा थाल चट कर गया। बेटे ने बड़े अफसोस से कहा अब्बा जान अल्लाह की बेपनाह रहमतें आप पे नाजिल हो, अम्मी ने तो बड़े बड़े मेहनत से ये पकवान आपके लिए तैयार किया था, हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि आप ये खाते, लेकिन आपने एक ऐसे शख्स को खिला दिया जिससे इतना भी नहीं पता कि उसने क्या खाया और उसका मज़ा क्या था। शेख ने फरमाया रबी बेटा अगर ये शख्स नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारा अल्लाह तो जानता है। फिर कुरान की ये तिलावत आयत तिलावत की लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम तो नेकी को पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि वो चीज़ जो तुम्हें पसंद हो वो ना खर्च कर दो। चूंकि इनको मीठा पसंद था इन्होंने वो खर्च कर दिया। तो अभी ये जो दो मेहमान थे इनके इनके पास ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि अब जोहर का वक्त तो करीब हो रहा है, तो अभी बातचीत का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने जल्दी से पूछा कि आप हमें कोई नसीहत कीजिए। तो आपने फरमाया ए हिलाल, इतनी प्यारी नसीहत है ना ये, ए हिलाल लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुन के कहीं धोखा ना खा जाना, लोग तो सिर्फ तेरे जाहिर को देखते हैं, तेरे बातिन का इनको क्या इल्म। सुभान अल्लाह, वाकई हमारे बातिन को तो हम खुद ही सिर्फ जानते हैं ना, लोगों ने देख लिया ये स्कार्फ पहनती हैं, अबाया पहनती हैं, चलो जी लोगों ने समझ लिया ये बहुत नेक है, हालांकि हम नहीं जानते कोई अगर स्कार्फ पहनती हो बाया पहनती हो वो अंदर से क्या है, वो कितनी बदजुबान हो, उसके अंदर कितना बुग्ज़ कीना हो, वो कैसी हासिद हो, हमें नहीं पता। वो दिल में कितनी सख्त हो, उसका दिल कितना सख्त हो हम नहीं जानते। उसके बरक्स एक और हो सकती है जो वाजबी से फराइज बस पूरे करती हो। छोटा सा स्कार्फ लिया हुआ उसने, कोई ज्यादा उसके बहुत हाल हुलिये से कोई इतना नहीं आपको लग रहा कि बहुत कोई नेक पारसा है, तो अब आप बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं और सोचते हैं बस ये है ना नकाब लिया हुआ, ये बड़ी नेक है और ये तो बिल्कुल ही ऐसे। हम नहीं जानते, आपको क्या पता जो दूसरी खातून हो वो दिल की कितनी नरम हो, कितनी आजिज मिजाज हो, कितनी नेक हो। इसी तरह मर्दों में भी किसी ने किसी की दाढ़ी देख ली, टोपी देख ली तो सोचा बस ये इससे ज़्यादा तो नेक कोई है ही नहीं, आपको क्या मालूम उसका बातिन क्या है। दूसरा एक वाजबी सी शक्ल का है, बहुत लंबी दाढ़ी नहीं है कोई, बस हाल हुलिये से भी दरमियाना है, फराइज अदा करता है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि उसका दिल कितना अच्छा हो। ये नहीं मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन हम नहीं जानते, हम लोगों के सिर्फ जाहिर को देख सकते हैं, बातिन का हमें क्या पता। तो फरमाया इससे जब लोग तुम्हारी तारीफ करें ना, लोग आपकी अबाया स्कार्फ देख के तारीफ करने लगेंगे, कुरान पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो लोग कहेंगे हाँ भाई इससे ज्यादा क्या नेक हो सकता है, लेकिन वो तो सिर्फ हमारे जाहिर को जानते हैं, उससे देख के ही वो जजमेंट्स दे देते हैं, हमारा बातिन क्या है इसके ऊपर नजर अल्लाह की है। फरमाते हैं देखो मेरी ये बात पल्ले बांध लो, तुम अपने अमल की जानिब रवां दवां हो, और हर वो अमल जो अल्लाह की रजा के लिए ना किया जाए वो बेकार है, बेकार है, इसकी कोई कदरों कीमत नहीं है। मुंजिर ने कहा मुझे भी कोई नसीहत कीजिए। फरमाया अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह से डरो, जिस चीज़ का तुझे इल्म नहीं है किसी आलिम से पूछ ले और खुद भी उसी की तरफ रुजू कर। ऐ मुनसर कभी ऐसा ना कहना कि मैं अल्लाह की तरफ रुजू करता हूँ। अब ये देखें सोचे, कभी ऐसा ना कहना मैं अल्लाह की तरफ रुजू करता हूँ, अगर रुजू ना किया तो ये झूठ लिखा जाएगा, बल्कि हमेशा ये दुआ करो अल्लाह तू मेरी तरफ रुजू फरमा, मैं तो कमज़ोर हूँ बेकस हूँ मुझे माफ़ कर दे। इस तरह तुम कभी झूठे नहीं होगे। अल्लाह अकबर, वो इतनी इतनी बातों में सोचते थे कि हमारा झूठ ना लिखा जाए। जैसे हम कहते हैं अल्लाह मेरा जीना मरना तेरे लिए, उसके बाद क्या ज़िंदगी मेरे को पता ही नहीं है, बड़े ज़ोरों शोर से कह रहे होते हैं, तो झूठ ना लिखा जाता होगा कि कितनी झूठी है मुंह से ये बोल रही है, और ज़िंदगी में देखो क्या वाकई इसका जीना मरना अल्लाह के लिए, ये वाकई इस तरह रुजू किया हुआ अल्लाह की तरफ, इस तरह लौट रही है अल्लाह की तरफ। कहते हैं ऐ मुंजर खूब अच्छी तरह जान लो इंसान की बातों में ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह, खैर की तलब शर से पनाह, नेकी के हुक्म बुराई से रोकना, कुरान की तिलावत के अलावा किसी और बात में खैर बरकत नहीं है, दीन की बात करो या खामोश रहो। कितनी अच्छी नसीहत है, दीन की बात करो नहीं तो खामोश रहो। ये खुद भी बहुत खामोश रहा करते थे, बहुत कम बातें करते थे रबी जो थे, फजूल कलमा इनकी ज़ुबान से नहीं निकलता था। एक आदमी जो आपकी खिदमत में 20 साल तक रहा वो कहता था कि मैंने 20 साल की तवील मुद्दत में इनकी ज़ुबान से कोई ऐसा कलमा नहीं सुना जिस पर कोई बात की जा सके, कलमा खैर के अलावा कोई दूसरा कलमा ज़ुबान से नहीं निकालते थे। एक और शख्स कहता है कि मैं 2 साल तक रबी के पास बैठा, इस दौरान उन्होंने मुझसे इंसानों के दुनियावी हालात के मुतल्लिक कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ एक दफ़ा इतना पूछा था तेरी माँ जिंदा है, और दूसरा ये सवाल किया था कि तेरे मोहल्ले में कितनी मस्जिदें हैं। कभी इसके अलावा कोई और सवाल किया ही नहीं, कि ऐसे ही दूसरे को कुरेद रहे हैं, अच्छा अपने हालात बताओ, अच्छा तुम ऐसे बताओ, जैसे लोगों को आदत होती है, नहीं। और कहते हैं दूसरों को भी फजूल बातें करने से मना करते थे, फरमाते थे बातें कम किया करो, अगर हो सके तो फजूल बातों की बजाय सुभान अल्लाह कह दो, अल्हम्दुलिल्लाह कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अल्लाह अकबर का विर्द कर लो, लोगों को अच्छी बातों की तलकीन कर दो, बुरी बातों से रोक दो, कुरान पढ़ा करो, शर से पनाह मांग लो, अल्लाह से भलाई की दुआ कर लिया करो। बजाय बेकार बातें करने की। तो इनसे फिर मुंजर कहने लगे, हम इतनी देर आपके पास बैठे हैं, आप हमें कोई शेर ही सुना दें। आपने कोई शेर नहीं हमें सुनाया, क्योंकि उस वक़्त के जो ऐसे उलमा थे समझाने के लिए शेर वगैरह भी बयान कर दिया करते थे। तो कहते हैं, आप क्या वजह है आपने नहीं कोई शेर फरमाया? तो रबी ने फरमाया, जो भी इस दुनिया में कहा जाता है इसको फौरन लिख लिया जाता है और वो कयामत के दिन पढ़ के सुनाया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे नामा आमाल में कोई शेर लिखा जाए और कयामत के दिन वो मुझे पढ़ के सुनाया जाए। या अल्लाह, इतनी एहतियात! ये अभी ताबी ही हैं, सहाबी नहीं है। फिर फरमाया, सुनो, अपनी मौत को कसरत से याद किया करो, वो गैब में हर दम तुम्हारी मुंतजर है। गैब में है ना, लेकिन हर वक्त तुम्हारे इंतजार में है। और फिर देखिए बड़ी गहरी बात की, कि जब निगाहों से ओझल किसी प्यारे की गैर हाजिरी लंबी हो जाती है तो इसका वापस लौटना करीब हो जाता है। कोई प्यारा जब काफी देर तक दूर रहे ना, तो समझ लो कि बस अब उसका वापस आना जल्दी ही होगा। और घर वाले हर दम उसकी राहें तकते रहते हैं। ये किसके लिए कहा? मौत के लिए। ये कह के इतना रोए कि आंसुओं की झड़ी लग गई। फिर फरमाया, कल जब शदीद जलजले में ज़मीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा और परवरदिगारे आलम गैज़ो गज़ब में होगा, फरिश्ते सफ़ बांधे खड़े होंगे, जहन्नम को हाजिर किया जाएगा, बताओ फिर हम क्या कर सकेंगे? कहते हैं, अभी इतनी बात उन्होंने की थी कि जोहर की अज़ान होने लगी। बेटे से कहा, आओ चले, अल्लाह का बुलावा आ गया। बेटे ने हमसे कहा, अब्बा जान को ज़रा सहारा देने में मेरी मदद करें। दाएं तरफ से बेटे ने सहारा दिया, बाएं तरफ से मैंने, और हम इन्हें लेकर मस्जिद की तरफ चल पड़े। इस हालत में कि उनके दोनों पांव ज़मीन पे घिसट रहे थे, जाहिर है उनको फालज हुआ हुआ था। मुंजर ने कहा, ए अबू यजीद, ये अब इनकी कुनियत है रबी की, आप माजूर हैं, यानी आप हैंडीकैप्ड हैं, अल्लाह की तरफ से आपको रुख्सत है, आप नमाज घर में ही पढ़ लिया करें। फरमाया, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैंने मुअज्जिन को ये कहते हुए सुना है, हय्या अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ दौड़ो। तो जो कामयाबी की तरफ बुलाए, इसकी आवाज़ पे तो लब्बैक कहते हुए जाना चाहिए, चाहे घुटनों के बल चल के क्यों ना जाना पड़े। वो कामयाबी की तरफ बुला रहा है, मैं क्यों ना जाऊँ? और ये वो ताबेई हैं जो अपने दौर में, अपने जोहद में, तकवा में इंतहाई दर्जे को थे, बहुत बड़े मुत्तकी इंसान थे। इनके बचपन के आपको एक वाकया बताती हूँ, जो मैं पढ़ के इतनी हैरान हुई। इनके बारे में कहा जाता है कि बचपन से इनकी तरबियत अल्लाह की इताअत के माहौल में हुई थी। रात के वक्त इनकी वालदा सो जाती थी, सुबह उठती थी तो क्या देखती थी कि इनका बेटा घर के एक कोने में हाथ बांधे खड़ा हुआ। और दुनिया माफिया से बेनियाज नमाज में गर्क है। तुम तो बड़ी मोहब्बत से आवाज़ देती, बेटे रबी, तुझे क्या हुआ, क्या नींद नहीं आती? ऐ मेरे प्यारे बेटे, अब तो सो जाओ। जवाब देती अम्मा जान, भला वो कैसे सो सकता है जिस पर रात का अंधेरा छा गया हो, उसे दुश्मन के हमले का खतरा हो। ये सुन के माँ के आंसू बह जाते थे, बेटे को दुआएं देती थी। जब ये जवान हुए तो इतने मुत्तकी थे, इनके ऊपर खुदा का खौफ इतना रहता था कि जब रात होती थी सारे लोग गहरी नींद सो जाया करते थे, वो इतना गिड़गिड़ाते, इतनी गिरियोजारी करते, इनकी गिग्गी बन जाती थी, हिचकियां लग जाती थी। अब माँ को तो अपने बेटे पे रहम आएगा ना, तरस आएगा, तो माँ को बड़ा तरस आता था। कहती थी, प्यारे बेटे, माँ सदके जाए, तुझे क्या हुआ है? क्या तुझसे कोई जुर्म हो गया है? क्या किसी को कत्ल कर दिया तूने? मुझे बताओ, क्या कि कौन है मकतूल, बताओ किसको कत्ल कर बैठे हो। हम इसके वारसों के पास जाएं, उनको मिन्नत समाजत करें, हो सकता है वो तुझे माफ कर दे। खुदा की कसम, अगर मकतूल के वारिस तेरी ये आहें, तेरी सिसकियां देख लें, तेरी इस तरह की गिरियाजारी देख लें, तो वो तुझे जरूर माफ कर देंगे, तेरे पर रहम कर देंगे, तरस खा लेंगे। फरमाते थे, अम्मा जान आप उनसे बात ना करें, क्योंकि मैंने किसी और को नहीं, मैंने अपने आप को कत्ल किया। माँ कहती है, वो कैसे? फरमाया, गुनाहों से अपने आप को कत्ल किया। ये है जो बात मैं आपको बताना चाह रही थी, कि हमें तो गुनाहों का एहसास भी नहीं होता ना, और इनको देखें कि तकवा में इतने बड़े हुए हैं, कि इनके जो टीचर थे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, वो इनके बारे में फरमाते थे कि अगर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते तो यकीनन आपसे मोहब्बत करते। रबी आप ऐसे हैं, काश कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में होते। उनको यही अफसोस रहता था कि ये उनकी ज़िंदगी में होते तो इनको देख के कितने खुश होते। और ऐ रबी, जब मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे अल्लाह की बारगाह में खुशू करने वाले लोग याद आ जाते हैं। ये इनके टीचर का इनके बारे में ख्याल था, जो सहाबी रसूल हैं। और फिर इनका ये हाल कि रातों को ऐसे रो रहे हैं, इतनी इनको फिक्र थी। सोच देखे ना, सोच है हमारी, सोचें कुछ और हैं। किसी से बात भी करें तो वो अपने आप को इतना हर कोई समझता है कि हम हमसे तो कभी कोई गलती जैसे हुई ही नहीं, बस रस्मन कह देंगे हाँ हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन वाकई क्या गुनाहों का एहसास है अंदर? जितनी दफा हम ये कहते हैं हम बड़े गुनाहगार हैं, हाय बड़े गुनाहगार हैं, इस तरह से करके कहते हैं, वाकई एहसास के साथ कह रहे होते हैं? अगर वाकई उतना एहसास भी दिल में है तो हमें तो सर उठाने के काबिल नहीं होना चाहिए, हमें तो इतनी आजजी हो जानी चाहिए, क्या हम कुछ बोल ना सकें किसी के आगे? फिर तकब्बुर कैसे हो सकता है? फिर बड़ी बड़ी बातें कैसे हो सकती हैं? फिर लोगों पे उंगलियां कैसे उठाई जा सकती हैं? क्योंकि जिसको तो अपने गुनाह का एहसास हो जाए, उसको तो याद ही नहीं रहता, दूसरों की गलतियां तो उसको नजर ही नहीं आती, उसको तो अपने ही ऐब नजर आते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसको अपने ऐब लोगों के ऐबों से बेपरवाह कर दे। इतने अपने ऐब नजर आए कि दूसरों पे उंगली उठाना ही भूल जाए। यही रबी जो थे, एक रात अब्दुर्रहमान बिन अजलान इनके पास रात गुजारी, तो कहते हैं कि जब इनको पता चला ना कि सारे यकीन हो गया, सारे सो गए, तो नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। और नमाज में ये एक आयत ऊंची आवाज़ में पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे। अम हसिबल्लज़ीन इजतरहुस सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीन आमनू व आमिलुस्सालिहात सवाअन महयाहुम व मामातहुम सा मा यहकुमून। वो लोग गुमान करते हैं जिन्होंने गुनाह किए कि हम उनको उन जैसा कर देंगे जो नेक अमल करने वाले हैं और ईमान लाने वाले हैं। ईमान ला के जो नेक अमल करने वाले हैं, क्या हम उनको उनके बराबर कर देंगे जो गुनाह करने वाले हैं? बराबर है उनका जीना और मरना, बहुत बुरा है जो वो कहते हैं। कैसे हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो जाए? ये सूरह जासिया की ग़ालिबन आयत है। तो वो रात भर नमाज में बार बार यही आयत पढ़ते जा रहे थे, हज़ारों कतार रो रहे थे। इनके करीबी साथी बयान करते हैं कि हम दरियाए फरात के किनारे पे पहुंचे, वहाँ एक जलती हुई लोहे की भट्टी को देखा जिसमें से आग के शरारे ऊपर उठ रहे थे। इनके साथियों ने ये वाक्या बताया है। तो वो कहते हैं, आग में इतनी तेज़ी थी, और उसकी तेज़ी पैदा करने के लिए ना वो पत्थर का कोयला उसमें इस्तेमाल कर रहे थे। जब रबी ने ये मंजर देखा तो वहीं ठहर गए। जिस्म पे ऐसे कपकपी तारी हो गई, लर्जा तारी हो गया। वो कहते हैं हम तो घबरा गए कि किनको क्या हो गया। तो इतने मुतासिर हुए और कुरान की ये आयत पढ़ने लगे, इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईद समीउ लहा तगयज़न व सफीरा। क्या कि जब वो इन्हें दूर से देखेगी, कौन जहन्नुम, जब वो इनको दूर से देखेगी तो ये उसका गुस्से से बिफरना और धाड़ें सुनेंगे। और ये जब ये जहन्नुम की किसी तंग और तारीक जगह में मशकें कस के फेंक दिए जाएंगे तो वहाँ अपने लिए मौत पुकारेंगे, मौत ही मौत पुकारेंगे। कहते हैं ये पढ़ते पढ़ते गशी खा गए और गिर पड़े। अपनी पूरी ज़िंदगी ये मौत की तैयारी में लगे रहे, अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए हर दम खुद को तैयार करते रहे। जब मौत का वक्त करीब आया तो इनकी बेटी आहुजारी करने लगी, उसको रोता देख के कहने लगे चुप करो बेटा, रोती क्यों, तेरे बाप को तो बहुत बेहतर चीज़ मिल रही है। तो सुभान अल्लाह, इन लोगों की ज़िंदगियों से ये सिर्फ आपको कहानी सुनाना नहीं मकसूद होता, जितने वाक्यात आपको सुनाती हूँ सिर्फ इस वजह से कि हम थोड़ा सा रियलाइज़ करें कि ये इंसान ही तो थे ना, कोई जिन्नात नहीं थे, कोई और मखलूक नहीं थे। इसी तरह इनके घर थे, बीवी बच्चे थे, इनके भी बाजार थे, इनके भी काम कारोबार थे, इनकी भी कोई खाना पीना रिस्क और सामान के लिए कोशिश करना इसी तरह की ज़रूरियात थी, इनकी भी गम और खुशियाँ थी, इंसान ही तो थे ये। क्या फ़र्क था, सोच का कितना बड़ा फ़र्क था। क्या बात है कि वो इतने जुहद और तकवा के बावजूद इतना खुदा खौफी में मुब्तला रहते थे, तैयारी में लगे रहते थे, उनको इतना तक वॉच करते थे कि हम मुंह से क्या बोल रहे हैं। अगर हम अल्लाह तआला को कह रहे हैं कि अल्लाह मैं आपकी तरफ रुजू करता हूँ और ना किया तो झूठ हो जाएगा, इतनी इतनी बात को वॉच करते थे। तो खुद को ज़रा रख के देखा करें इन हस्तियों के मुकाबले में कि वो जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया, रदी अल्लाह अनहुम जो कहलाए, वो कैसे हुआ करते थे। ताकि अगर मैं भी रदी अल्लाह अनहा बनना चाहूँ तो मुझे अपने अंदर क्या पैदा करना है। कि अगर इन किस्सों से ये बात नहीं सीखी और आप सिर्फ एक स्टोरी सुन के हाँ आज एक बड़ा अच्छा किस्सा सुना, इस तरह से चलेगा तो फ़ायदा नहीं है। ये बातें नहीं ऐसे ही आपको बताई जा रही, इसलिए ताकि हमें अपनी खामियां नज़र आने लगें, हमें ये पता चले हम खड़े कहाँ पे हैं, हमें अपनी पोजीशन तो पता चले। ये ना हो हम धोखे में ही रहें और अपने आप को पता नहीं कहाँ समझें, क्योंकि बड़ी जल्दी हम धोखा खा जाते हैं। बड़ी जल्दी हमें ये वहम हो जाता है कि हम तो बड़े नेक हैं और बाकी सारों को हम नीचा देखना शुरू कर देते हैं, हमारी नज़र में सब नीचे हो जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को अपनी नज़रों में बड़ा ऊंचा समझते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोचें ये दुआ है कि अल्लाह मुझे मेरी नज़रों में हकीर कर देना और लोगों की नज़रों में बुलंद कर देना। तो हमें अपना आप अपनी नज़रों में तो नीचा ही लगना चाहिए, कैसे जुर्रत हो जाती है हमारी ये कहने की कि हाँ वो तो नेक नहीं है ना, हाँ वो तो ऐसे ही है ना, या हमारी बातों में भी कभी ये बात कैसे आ जाती है। क्योंकि दिल में ये बात होती है ना कि जिसमें ये झलके कि मैं अपने आप को नेक समझती हूँ, मैं अपने आप को नेकों की लाइन में खड़ा करती हूँ। किस तरह, किन से कंपेयर करते हो अपने आप को, काफरों से, फासिकों फाजरों से? कंपेयर करना तो इनके साथ करो जिनसे अल्लाह राजी हुआ, क्योंकि हमने भी वो बनना है जिनसे अल्लाह राजी हो जाए, हम उस कोशिश में लगे हुए ना। और अगर मैं अपने आप को समझूं कि मैं बहुत नेक हूं तो बताएं जरा मैं कहाँ खड़ी हुई हूं इनकी लाइन में। अगर हम अपने आप को समझते, नेक तो वही हुआ ना कि जिससे अल्लाह राजी हो गया, बताएं इस लाइन में कहीं हम नजर आते हैं। दूर दूर भी, दूर दूर भी नामो निशान नहीं मुझे तो अपना नजर आता। फिर बताइए कैसे झलक सकती है ये बात हमारी गुफ्तगू में, कैसे आ सकती है। तो इस खुशफहमी में ना रहिएगा, इस धोखे में ना आइएगा। जैसे उन्होंने फरमाया कि लोग तुम्हारा जाहिर देखते हैं, बातें नहीं देख सकते। तो लोगों की बातों में ना आ जाना, हाँ कुरान पढ़ते हैं, हाँ इन्होंने तो इतना पढ़ लिया, हाँ ये तो पढ़ाती हैं, हाँ ये तो ऐसे हैं, ये लोगों की बातों में, इनकी खुशामदों में, इनकी तारीफों से धोखा ना खा जाना। ये ना कि वहाँ पे सरप्राइज मिले। तो आज का हमारा काम ये होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए कि हम बेशक पेपर पे ना लिखें, कम से कम अपने जहन में ज़रा लिस्ट तो बनाइए कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई हैं ज़िंदगी में। हमारे सामने तो सहाबाए कराम देखें, सुभान अल्लाह, कैसे वो आजिज़ थे, कैसे वो अल्लाह के सामने झुके हुए थे, कैसे उनमें इतना एहसास था। अब देखें, याद रखें, जो ये जो आपकी आजिज़ी होती है ना, ये छुपी नहीं रहती। जैसे तकबर छुपा नहीं रहता, आजिज़ी भी छुपी नहीं रहती, वो झलक जाती है। वो आपके आपके अमल में, आपके अखलाक में, इसमें कहीं झलक जाती है। जैसे हज़रत उमर थे, या खलीफा वक्त थे, बैतुल मक़दस की चाबियां लेने जा रहे थे। सबको मालूम है, आप सबने ये वाक्या सुना होगा, अपने गुलाम की सवारी की मुहार थामे हुए थे, क्योंकि सवारी एक थी, गुलाम ने मुहार पकड़ी हुई थी जब चले। उसके बाद फिर खुद नीचे उतर जाते थे, गुलाम को ऊपर बिठाते थे और खुद मुहार पकड़ के चलने लगते, क्योंकि एक सवारी थी, दो लोग थे, बारियां लगाई हुई थी। जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे तो गुलाम की बारी थी ऊपर बैठने की। गुलाम हिचकिचाया भी, फरमाया नहीं। जब वो ऊपर बैठ गए और इन्होंने मुहार पकड़ ली, अब आप खुद सोचें कि शहर से बाहर लोग आए हुए हैं देखने के लिए कि ये मुसलमानों के खलीफा कैसे हैं। वो बेचैन है देखने के लिए, तो क्या देख रहे हैं? वो तो ये देखने आए हैं कि वो कौन है जिसकी वजह से मशरिक और मगरिब में जलजला आया हुआ है। और इधर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखें, मुहार पकड़ी भी है और गुलाम ऊपर बैठा हुआ। जब उन लोगों ने ये देखा तो उन्होंने कहा, इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कि जिसका खलीफा ऐसा हो। जाहिर है हम इंसानों में सिर्फ ये बातें ही हो सकती हैं, अमल में तो हम में कहीं नहीं नजर आता। तो आजिज़ी लेकर आनी है अपने अंदर, झुक जाओ अल्लाह के सामने। अपनी खताओं का जितना ज्यादा आपको एहसास होगा ना, उतना आप सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे, उतनी ही आपके अंदर आजिज़ी आएगी। ये आजिज़ी ख़त्म इसीलिए हुई है कि गुनाहों का एहसास नहीं है। चाहे मुंह से जितना भी हम बोलते जाते हैं, हम बड़े गुनाहगार हैं, हाँ हम बड़े ऐसे हैं, जिसको अपनी खताएं देखने से फुर्सत नहीं मिलेगी ना, फिर वो अकड़ के नहीं चलेगा। तो आज की दुआ भी इसी हवाले से है, रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये वो दुआ है कि जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम की बख्शिश हुई थी, जिसकी वजह से हमारे बाप की बख्शिश हुई, जो सबसे पहली ख़ता के ऊपर बख्शिश की दुआ मांगी गई थी इस ज़मीन के ऊपर। पहले इंसान ने जो दुआ मांगी थी, हम भी वही दुआ मांगते, और इस एहसास के साथ कि वाकई रब्बना ज़लम ना अनफुसना, अल्लाह हमने वाकई जुल्म किया अपने आप पे, अल्लाह अगर तूने माफ़ ना किया हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, माफ़ करके तूने अगर हम पे रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, हम तो बड़े खसारे वाले हो जाएंगे, अल्लाह हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। शऊर के साथ मांगना है। आज का जिक्र है, सुभान अल मलिक अल कुद्दूस, सुभान अल मलिक अल कुद्दूस, सुभान अल मलिक अल कुद्दूस, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर तस्बीह करना यानी सुभान अल्लाह कहना, तहलील करना यानी ला इलाहा पढ़ना, और तकदीस करना यानी अल्लाह की पाकी बयान करना, ये अपने ऊपर लाजिम कर लो। और तकदीस में क्या आता है, जैसे सुभान अल मलिक अल कुद्दूस, या सुबुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, इस तरह की कलिमात। तो फरमाया इनको लाजिम कर लो, और उंगलियों पे गिना करो, इसलिए कि ये उंगलियां कयामत में इनसे सवाल किया जाएगा, इनको गोयाई दी जाएगी, ये बोल सकेंगी। और अल्लाह के जिक्र से गफलत ना करना, अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिए जाओगे। हम चाहते हैं ना हमें अल्लाह की रहमत मिले, चाहते हैं हम सब ना, तो उसके जिक्र को भूलना नहीं है। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के जिक्र से गफला ना करना, वरना रहमत से महरूम हो जाओगे। अल्लाह ताला हमें जिक्र करने वाला और शुक्र करने वाला बना दे। नमाज में आपको बताऊं कि आगे अत्तहियात का एक तो थोड़ी सी बात ये समझ लें कि नमाज में हिलने की इजाज़त नहीं है। जैसे कई दफ़ा हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो बड़े पता नहीं वजद में आ जाते हैं, इतना इतने उसमें इन्हेमाक से पढ़ रहे होते हैं, हिल हिल के आगे पीछे हिल रहे होते हैं। इसकी इजाज़त नहीं है नमाज़ में, आप हिल नहीं सकते। बिल्कुल सकूत करना है आपने, बिल्कुल आपके ऊपर स्टेशनरी पोजीशन होनी चाहिए, ज़रूरत से ही आप हरकत कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हिल हिल के नमाज़ नहीं पढ़ सकते। अक्सर लोग यह गलती करते हैं। इसी तरह मैंने आपको सज्दे का बताया था, तो सज्दे में जाते वक्त भी ज़मीन पर पहले अपने हाथ रखें फिर घुटने रखें, यानी ऐसे नहीं बैठना जैसे ऊँट बैठता है कि पहले घुटने रख रहे हैं फिर उसके बाद हाथ। ऊँट पहले घुटने ज़मीन पर टेकता है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया। और सज्दे में हथेलियों और घुटनों के साथ पेशानी और नाक भी अच्छी तरह ज़मीन पे लगाएं। कई लोगों ने सिर्फ माथा रखा होता है, नाक लगती ही नहीं है, क्योंकि सज्दा जो है वो 7 हड्डियों पे करने का हुक्म है। यानी ये 2 हथेलियाँ आपकी ज़मीन पे लगेंगी, 2 घुटने लगेंगे, 2 पैरों के जो पंजे हैं वो लगेंगे, और ये 7वीं जो है वो नाक समेत जो पूरी पेशानी की साथ नाक समेत हड्डी है वो, ठीक है। दोनों हाथ कंधों के या कानों के बराबर आप रखेंगे, हाथों की उंगलियां मिली हुई होंगी, जुदा जुदा ना हो। और ख़ास तौर पे प्लीज़ ध्यान रखें जो आपकी पाँव की उंगलियां हैं वो किबले की तरफ मुड़ी होनी चाहिए, बाज़ लोग पीछे की तरफ रखते हैं, इसी तरह बाज़ ज़मीन पे खड़ी कर लेते हैं उनको, तो उनका जो उनकी जो टिप्स है ना, जो आपकी पैरों की उंगलियों की टिप्स हैं, उनका रुख उनकी डायरेक्शन किबले की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। और सीना पेट और रानें जो होती हैं आपकी, ये ज़मीन से ज़रा ऊंची रहें। इसी तरह कोहनियों को, एल्बोज़ को ज़मीन पे ना टिका दें, ना ही बिल्कुल अपनी पहलुओं के साथ अपनी साइड के साथ मिलाएं, बल्कि ज़मीन से थोड़ी ऊंची और पहलुओं से अलग रखें। ये सारे अहकामात मर्द और औरत तो दोनों के लिए बराबर हैं, और इसका आप हवाला देख सकते हैं, सही बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, अबू दाऊद में भी है, सब जगह पे सजदे का तरीका लिखा हुआ है। तो आज आपको अत्तहियात का तर्जुमा बताती हूँ, अत्तहियातुलिल्लाही, अजमत और सलामती अल्लाह के लिए। अत्तहियात क्या होता है? तहिया, तमाम तोहफे समझ लें अल्लाह के लिए। और इसका यह भी तर्जुमा किया गया है कि ज़ुबानी इबादतें सब अल्लाह के लिए हैं। तो इतनी को सिर्फ अभी आप याद रखें, इंशाल्लाह बाकी आइंदा बताऊंगी आपको। वुज़ू में हमने यहाँ तक किया था, मसह तक। उम्मीद है कि अब आप मसह बेहतर कर रहे होंगे, सही कर रहे होंगे, 1/4 सर का नहीं पूरे सर का मसह कर रहे होंगे, पूरे सर में पीछे तक लेकर जाएंगे, बस वहाँ तक लेके गए, वहाँ से छोड़ दिया आपने, वापस लेकर आ भी सकते हैं, वो भी एक हदीस में है। और ये भी है सुन्नत कि आप पूरे सर तक पीछे तक ले जाएं और बस छोड़ दें, फिर कानों का मसा करें। अब आपने पैरों का को धोना है, राइट फुट पहले, और एड़ियों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि एड़ियाँ ज़रूर धुल जाएं, इसी तरह आपके टखने एंकल्स आपके भी धुल जाएं, पूरा पाँव उनकी उंगलियों का खलाल करें पाँव की, और इनको अच्छी तरह से धो लें। इस दौरान कोई भी दुआ नहीं पढ़नी। इंशाल्लाह मैं आपको कल इस वज़ू के एंड की दुआ बताऊंगी, और कुरान पाक का नेक्स्ट पारा आप पढ़ेंगे। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान की तिलावत करता है उसके लिए कयामत के दिन नूर होगा, जब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा ना, तो ये नूर बनेगा आपके लिए। तो अंधेरों में रहना किसी को पसंद नहीं होता। हम यहाँ पे भी अगर अंधेरा हो तो हम घबरा जाते हैं, जल्दी लाइट ऑन करो। तो कयामत के दिन के अंधेरे तो बहुत तारीक है, बहुत ज़्यादा डार्क है। वहाँ पे नूर चाहिए होगा, लाइट चाहिए होगी, इसलिए कुरान की तिलावत करें। नमाज भी नूर बनेगी, कुरान भी नूर बनेगा। तो आप कितना नूर चाहते हैं, कितनी लाइट चाहते हैं अपने लिए? वो नाइट लाइट होती है ना, उतनी चाहते हैं या पूरा बल्ब चाहते हैं? उस मुताबिक ही तिलावत करें। आज की जो सुन्नत है, पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आज दलील के साथ बताती हूँ, क्योंकि ये सुन्नत जो है ना, ये ख़त्म हो चुकी है, इसको दोबारा ज़िंदा करें। वैसे तो ये गैर मौक्किदा सुन्नतों में आती है, मौक्किदा नहीं है, यानी हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी, मगर कभी कभी पढ़ी है, मगर इसकी ताकीद बहुत की है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में दो दफ़ा फरमाया, सल्लू कबला सलातिल मगरिब, मगरिब की नमाज से पहले नमाज पढ़ो। यानी जब मगरिब पढ़ने लगे ना, अज़ान हो जाए मगरिब की, तो आप जल्दी से उठें, आपने पहले दो नफल पढ़े, उसके बाद फिर आप मगरिब पढ़ें। हज़रत अनस फरमाते हैं कि सहाबे कराम ये दो रकतें इतनी कसरत से पढ़ते थे कि जो नया नया बंदा आता था वो समझता था मगरिब की नमाज हो चुकी है, ये बाद में सुन्नतें पढ़ रहे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दफ़ा फरमाया, मगरिब की नमाज से पहले नमाज पढ़ो, मगरिब की नमाज से पहले नमाज पढ़ो, फिर तीसरी दफ़ा फरमाया, लिमन शाह, जो चाहे, यानी ये तुम्हारी चॉइस है, ये एक नफली चीज़ है ना, फ़र्ज़ तो नहीं है, तो जो तुम में से चाहे। तो कम अज़ कम इसलिए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौक्किदा सुन्नतों में से है। मौक्किदा तो आपको मालूम है ना कौन सी है, तो ये गैर मौक्किदा सुन्नतों में से है, ठीक है? ये अबू दाऊद की रिवायत है, इसके बारे में कुछ इशारा बुखारी में भी है। तो इसलिए जब आप रोज़ा खोल लें तो खजूर और पानी के साथ खोल के आप अगर जल्दी से ये दो नफल पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ के फिर उसके बाद आप इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ लें, ठीक है? इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए, हमारे क़याम और सियाम को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला रमज़ान का हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हमारी कोताहियाँ नज़र आने लगें, दूसरों की गलतियों से ज़्यादा हमें अपनी गलतियाँ नज़र आने लगें, इनका एहसास अल्लाह ताला हमारे दिलों में जगा दे। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।